हरे कृष्णा ओमज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम उपदेश अमृत के दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आपके पास ग्रंथ है या अवश्य आप सबको ये दूसरा श्लोक कंठस्थ होगा। कितने भक्तों को ये श्लोक कंठस्थ है? ठीक है, कितने भक्तों को नहीं है? जिनको नहीं है अभी आपको करना है, ठीक है, इस हफ्ते के अंदर ही इसको आप कंठस्थ कर दीजिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। आप में से कोई चार भक्त बिना किताब में देखे हुए ये श्लोक लीडिंग करिए। आप बोलिए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद या शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। अति आहारः अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास अत्यधिक उद्यम च तथा प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना, नियम विधि विधान आग्रह अत्यधिक आसक्ति या अग्रह अत्यधिक उपेक्षा, जनसंगह सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति च तथा लौल्यम अत्यधिक अभिलाषा या लालच च तथा षड्भिः इन छह के द्वारा भक्ति ही भक्तिमय सेवा विनश्यति नष्ट हो जाती है। अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दो, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीन, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चार, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रतापूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांच, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा छह, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। जैसे आपको याद होगा पहले देखा था यहां, देखिए दूसरे श्लोक के बारे में क्या बताया गया है। भक्तिर प्रतिकूल षड्गुण, तो भक्ति के लिए जो छह चीजें प्रतिकूल हैं उनका वर्णन यहां पे है। याद रखिए कि इस श्लोक के साथ में एक विषय शुरू हो रहा है कि मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार कैसे होता है और उसके भक्ति के नियम कैसे होते हैं। श्लोक संख्या 2, 3 और 4 में ये विषय है और विशेष करके दूसरे श्लोक में भक्ति के लिए वो कौन से छह गुण हैं या छह चीज़ें हैं जो हानिकारक होती हैं। तो ये षड दोष हैं, विशेष करके जो भक्ति में उन्नति करना चाहता है उसे इन छह दोषों से बच के रहना चाहिए। पहला है अत्याहार, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियमाग्रह, पांचवा जनसंग और छठा लौल्यम। मनुष्य जीवन सदा सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है, ये तात्पर्य के पहले भाग में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की कथाएं सुन सकते हैं। तो ये जानते हुए कि हमारे जीवन का ध्येय भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय और प्रयास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए, न कि भगवान के प्राप्ति के लिए बिल्कुल समय नहीं देना या धार्मिक क्रियाओं के लिए केवल नाम के लिए ध्यान देना और सारा ध्यान और सारा प्रयास केवल सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना, ये उचित नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने विचार ऊंचे रखें कि मुझे संसार का कुछ प्राप्त नहीं करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ये ऊंचा विचार है। नीच विचार कैसा है? मैं संसार की चीज़ें प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं धन चाहता हूँ, इंद्रिय तृप्ति चाहता हूँ, प्रतिष्ठा चाहता हूँ, ये सारे चीज़ें नीच श्रेणी निम्न श्रेणी के विचार हैं। मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, आत्म साक्षात्कार चाहता हूँ, ये सब ऊंचे विचार हैं। तो ऐसे ऊंचे विचार बनाए रखने के लिए और इन विचारों को पूर्ण करने के लिए हमें सादे जीवन की आवश्यकता है। सादा जीवन नहीं बिताएंगे तो ऊंचे विचार हमारे मन में आएंगे भी नहीं, और आएंगे भी तो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने यह महत्वपूर्ण सूत्र हम सबके लिए दिया है, सादा जीवन और उच्च विचार। तात्पर्य का पहला भाग इसी चीज में है। तो प्रभुपाद जी यहाँ इसी भाग में कहते हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है? ये आध्यात्मिक शक्ति है और श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी के नियंत्रण में है ये, बल्कि अंतरंगा शक्ति को ही श्रीमती राधा रानी कहते हैं। और जो जीव ऐसे अंतरंगा शक्ति के अधीन रहता है उसे महात्मा कहते हैं। भगवद गीता का कौन सा श्लोक है? बहुत अच्छा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं अव्ययम्। कि जो व्यक्ति भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय स्वीकार करता है वो महात्मा कहलाता है। और वो दैवी प्रकृति का आश्रय ये जानते हुए करता है कि कृष्ण ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्, कि श्री कृष्ण अव्यय है और उस सारे प्राणियों के उद्गम है, और इस तरह से वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये महात्मा, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जीवात्मा जो कि तटस्था शक्ति है वो या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन रह सकता है या तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रह सकता है। तो अंतरंगा शक्ति या श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी के आश्रय में रह के कृष्ण की सेवा करना, इसको भक्ति कहते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति ये माया के अंतर्गत नहीं आता, महामाया बहिरंगा या इस भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक आध्यात्मिक कार्य है। भले बाह्य दृष्टि से ऐसा क्यों न प्रतीत हो कि यह भी एक साधारण भौतिक कार्य है, फिर भी ऐसा नहीं है। जैसे कोई सफाई कर रहा है मंदिर की, लगेगा कि ये तो सफाई तो बाहर भी होती है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी कोई कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, कोई बोल रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, वो तो विश्वविद्यालय में भी होता है, पाठशालाओं में होता है, कोई मृदंग करताल आदि बजा के संगीत हो रहा है, बाहर भी संगीत हो रहा है, यहाँ भोजन लेते हैं वहाँ भी बाहर भोजन लोग लेते हैं, तो ऐसे भी प्रतीत हो सकता है कि ये भी साधारण कार्य, इसमें क्या अंतर है। एक बार एक भक्त ब्रह्मचारी बने थे तो उनके भाई उनको चेतावनी दे रहे थे या उनको चुनौती दे रहे थे बल्कि, कि ये सब आप जो कह रहे हैं कर रहे हो ये सब बेकार है, तुम में और मुझ में अंतर क्या है ये बताओ। तुम भी खा रहे हो मैं भी खा रहा हूँ, तुम सो रहे हो मैं भी सो रहा हूँ, तुम भी संगीत कर मैं भी संगीत में रुचि रखता हूँ, ऐसे वो अनेक चीज़ें बताते गए। तो ब्रह्मचारी बुद्धिमान था, उसने कहा अंतर एक ही है, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ और तुम माया के लिए कर रहे हो, बस अंतर उतना ही है। और क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं इसलिए थोड़े ऐसे कार्य हैं जो वर्जित हैं, जिनको कृष्ण पसंद नहीं करते इसलिए हम नहीं करते हैं। और बाहर के लोग हैं उनके लिए भी थोड़े कार्य वर्जित होते हैं, जब वो अपने कारखाने में होते हैं, अपने मालिक के दफ्तर में होते हैं, तो कई चीज़ें होते हैं जो नहीं कर सकते। वो दफ्तर में कोई नियम होते हैं ना, तो नियमों का पालन तो करना पड़ता है जब वो मालिक की सेवा कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम हमारे मालिक की सेवा करते हैं हमें भी नियमों का पालन करना है, तो इसमें कौन सी नई बात है। इतना ही है कि जो सांसारिक व्यक्ति हैं वो उनके मालिक की सेवा करते हैं दिन में 7 घंटे 8 घंटे दफ्तर में जाते हैं, उस समय नियम का पालन करना पड़ता है। फिर बाहर आके जो करते हैं मालिक का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी सेवा 24 घंटे है, इसलिए ऐसा नहीं है कि 22 घंटे हम कृष्ण की सेवा करेंगे और 2 घंटे हम स्वतंत्र हो गए फिर हम जो चाहे कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी सेवा 24 घंटे की है, हमारे मालिक एक है। बाह्य दृष्टि से भले वो एक जैसे लगे परंतु जमीन और आसमान का अंतर है दोनों में। अर्जुन के युद्ध में और दुर्योधन के युद्ध में बहुत अंतर था। दिखने में तो ऐसे लग रहा था कि दोनों ही धनुष बाण चला रहे थे, रथ पे सवार थे, युद्ध कर रहे थे, दोनों ही क्रोधित होके युद्ध कर रहे थे, फिर भी अंतर बहुत बड़ा है। अर्जुन कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन अपने लिए कर रहे थे, अपने अहंकार के लिए कर रहे थे। ये ऐसे लगा, ऐसे हो सकता है कि इसमें फर्क क्या है, लेकिन फर्क बहुत है। जैसे कोई कहेगा मैं एक कंपनी के लिए नौकरी करता हूँ और वो व्यक्ति दूसरे कंपनी के लिए नौकरी करता है, तो फर्क क्या है उसमें। उसी प्रकार से मैं संसार की सेवा करता हूँ, तुम कृष्ण की सेवा करते हो, उसमें फर्क क्या है। हाँ, एकता तो ये है कि हम सब सेवक हैं। कम से कम उस व्यक्ति को ये तो मानना चाहिए कि वो प्रभु नहीं है, स्वामी नहीं है, वो दास है। स्वरूप से जीव दास है, परंतु जिसकी वो सेवा कर रहा है वो उसके स्वरूप के अनुसार नहीं है। और उसकी सेवा करने से, उसकी जो मालिक की सेवा करने से उसे केवल जन्म मृत्यु मिलता है। लेकिन जब जीव श्रीमती राधा रानी का आश्रय स्वीकार करके कृष्ण की सेवा करता है तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, सारे अनर्थों से दुर्गुणों से वो मुक्त हो जाता है, तो बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना और बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेना, इसमें बहुत अंतर है। तो जीव जब महात्मा बन जाता है, राधा रानी की कृपा से कृष्ण की सेवा करता है, तो जो कार्य वो करता है उसे भक्ति कहते हैं। परंतु वही तटस्था शक्ति जीव जब बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है तो फिर वो दुरात्मा कहलाता है, महात्मा नहीं। और ऐसे कार्य भक्ति में सेवा नहीं होते हैं, ऐसे कार्यों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। तो अभी ये बताइए, अंदर अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्यों को क्या कहते हैं? भक्ति। बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्यों को क्या कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति। बस सरल बात है। अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य क्या है? भक्ति। बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति। बस ये बात आप याद रखिए। तो यदि हम कृष्ण के से स्वतंत्र होकर कोई इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि अभी हम भक्तिमय सेवा नहीं कर रहे हैं। चुपके से कोई भक्त जाके सिनेमा थिएटर में जाके बैठ जाता है कहीं, तो भले तिलक पहना हो, कंठी माला पहनी हो, लेकिन समझना चाहिए कि अब मैं जो कर रहा हूँ वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। तो ऐसे हमें बहिरंगा शक्ति से दूर रहना चाहिए, हमें दुरात्मा नहीं बनना चाहिए। तो जीव तटस्था शक्ति है, इसका मतलब है कि अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के तट पे स्थित है। और जिस प्रकार से एक नदी के तट पे स्थित होने वाला व्यक्ति फिसल के नदी के अंदर गिर सकता है, ऐसी संभावना है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति ऐसे गिर जाएगा, एक आध बार कोई व्यक्ति ऐसे गिर भी जाए, क्योंकि वो तट पर स्थित है। ठीक उसी प्रकार से हम सब जीव तटस्था शक्ति होने के कारण कभी ऐसे अंतरंगा शक्ति के गुण होने के बावजूद, क्योंकि हम इतने अणु हैं, इतने छोटे हैं, इसलिए हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आके हम गिर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भक्तिमय सेवा में हम बड़े तत्परता से, आतुरता से, सावधानी से, हृदय से हम लगे रहे। और यह भौतिक सृष्टि में रहने का अंतर ये परिणाम ये है कि हर एक व्यक्ति को बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहते हुए इन तीन प्रकार के कष्टों का या क्लेशों का अनुभव करना पड़ता है। कौन से हैं ये तीन क्लेश? हाँ, यहाँ लिखा आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। क्लेश यानी कष्ट। तो आधि दैविक क्लेश यानी देवताओं के द्वारा उत्पन्न, यथा सूखा, तूफान इत्यादि, ज्वालामुखी, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी, दावानल जो अचानक गर्म हवा के कारण उत्पन्न हो जाता है, बाढ़ आ जाना नदी में, सुनामी आ जाना समुद्र में, ये सब अधिदैविक क्लेश कहते हैं। क्यों, इनका देवताओं से क्या संबंध है बताइए? हाँ, क्योंकि देवता ही हमें ये सब चीजें प्रदान करते हैं, जल, वायु और ये जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हिंदी में, आप समझ गए ना? अम्लजन। तो जितने भी चीजें हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, वो सब किसी न किसी देवता के अधीन होते हैं। तो वो देवता, उनके अधिष्ठाता देव होते हैं, वो प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य देव अग्नि और प्रकाश के देव है, इंद्र देव वर्षा के देव है, वायु देव पवन के देव है, अग्नि देव अग्नि के देव है। इस प्रकार से देवता हमें सब कुछ देते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो ये सारी चीज़ें संतुलित और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं मनुष्यों के लिए और समस्त प्राणियों के लिए। परंतु जब कोई गड़बड़ हो जाता है, जब मनुष्य ज़्यादा पाप आदि करते हैं, तो फिर देवताओं के ऐसे दिए हुए चीज़ों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, और इससे कष्ट उत्पन्न होता है। इसको अधिदैविक क्लेश कहते हैं। फिर अधिभौतिक क्लेश क्या है? अन्य जीवों द्वारा, अर्थात जो देवता नहीं है उनके अलावा अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न जो क्लेश हैं, जैसे कि कीड़े, शत्रु इत्यादि, मच्छर काटते हैं या चूहा आके कुछ हमारे कपड़े खा जाते हैं, या वृंदावन में आप रहते हो तो कपड़े बाहर सुखाने डालोगे तो बंदर आके कॉपिन फाड़ देता है, या गमछा उठा के ले जाता है, चप्पल उठा के ले जाता है, हमारे कितने सारे चप्पल खो गए, इसलिए बाद में अभी हम कमरे के अंदर चप्पल ले आते हैं वहाँ, क्योंकि बंदर उठा के ले जाते हैं, उनको अच्छा लगता है खाना चबाना, चबा के फिर कहीं फेंक देते हैं। कभी कभी हमारा पड़ोसी कुछ हमें परेशान करता है तो कोई ना कोई हमें परेशान करता है, ये दुनिया का नियम है। कोई ऐसे शांति से नहीं रह सकता, हर क्षण कोई ना कोई समस्या है। थोड़े समय के लिए थोड़ी शांति रहती है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि अभी थोड़े समय में कुछ ना कुछ होने वाला है जो हमको पसंद नहीं आएगा। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कर देगा, या कुछ ऐसे घटना होगी जिससे कि हमारा मन विचलित हो जाएगा। यह है संसार। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक दिन भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी तो ये बहुत बड़ी बात है। तो रोज की बात, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। हम ऐसी कोई चीजें देखते हैं, सुनते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो तरह तरह के ऐसे कष्ट होते हैं जिनको अधिभौतिक क्लेश कहते हैं। और आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने ही शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले, जैसे कि कोई रोग है, प्यास है, भूख है, मानसिक तनाव है, ये सब चीज़ें शरीर और मन से उत्पन्न होने वाली हैं, इनसे भी हमें बहुत कष्ट मिलता है। तो जब तक हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हैं तब तक ये तीन क्लेश हमारे ऊपर आते रहेंगे। और जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये तीन क्लेश दुर्गा देवी के त्रिशूल हैं, जो बार बार दुर्गा देवी आक्रमण करती है प्रत्येक जीव के ऊपर। ये तीन क्लेश हैं दुर्गा देवी के। दुर्गा देवी अपने कार्य कर रही हैं, वो अपनी सेवा करती हैं भगवान के प्रति। ऐसा नहीं है कि दुर्गा देवी बहुत क्रूर हैं और उनको अन्यों को कष्ट दे के बहुत आनंद आता है, ऐसे नहीं है। जिस तरह से जेल के अधिकारी व्यक्ति को आनंद नहीं आता कैदियों को बंद रख के रखना वहाँ पे, लेकिन वो सेवा कर रहा है सरकार की। सरकार का कोई उद्देश्य है इन गुनहगारों को कैद खाने में भेजने में, तो वो जो जेल का अधिकारी है वो सेवा करता है सरकार की। ठीक उसी प्रकार से भगवान का कोई उद्देश्य है। हम सब जीवों को यहाँ भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भेजने में, और दुर्गा देवी भगवान की सेविका हैं, तो हम उनकी सेवा है कि हमें यहाँ बद्ध अवस्था में रखना। इस तरह से ये तीन क्लेश बार बार आते रहते हैं। और बद्ध जीव की ये चार समस्याएं, मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। तो ज्ञान की शुरुआत है कि हम ये जान लें कि जब तक ये चार चीजें हैं हम सुखी नहीं हो सकते हैं। फिर अभी चर्चा करते हैं श्रील प्रभुपाद जी पहले दोष के बारे में, अत्याहार। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अत्याहार के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना मनुष्य समाज, ये जो इसको अत्याहार कहते हैं, आहार, अति आहार। आहार का मतलब न केवल भोजन है परंतु धन भी है। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह करना और ज़्यादा भोजन करना, ये अत्याहार है। तो जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। अत्याहार हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर, उदाहरण चावल का बोरा। मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर ये है, क्या अंतर है? चावल का बोरा। नहीं, अंतर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में क्या है? क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? आप देखिए, हाँ, पशु जो होता है वो संग्रह अधिक नहीं करता है, जितना उसे चाहिए उतना ही उठा के ले जाता या खा लाता, उठा के नहीं ले जाता, खा लेता है। केवल मनुष्य ही है जो संग्रह करता है। तो ये चावल का बोरा क्या उदाहरण है, कौन समझाएंगे? हाँ, चावल का बोरा पड़ा है, कोई कबूतर या कोई पंछी आएगा तो 4, 10, 15, 20 दाने जितने भी खाने वो खा के उड़ के चले जाएगा। लेकिन कोई इंसान आदमी वहां पे आया, देखेगा कि चावल का बोरा पड़ा है तो बोरा का बोरा उठा के ले जाएगा। उसको एक दिन में खाना ही इतना है, 2-4 मुट्ठी चावल खाना है उसको, लेकिन फिर भी बोरा उठा के ले जाएगा। तो ये एक अंतर है। यद्यपि मनुष्य जीवन में बुद्धि अधिक होती है, फिर भी मनुष्य जीवन में देखा जाता है कि ऐसे संग्रह करने की वृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। मनुष्य को श्रद्धा नहीं रहता है कि भगवान मेरा भरण पोषण करेंगे। जो पशु हैं, पंछी हैं, क्या वो दफ्तर में जाते हैं, कारखाने में नौकरी करते हैं, कोई दुकान खोल के बैठते हैं, व्यवसाय करते हैं कुछ, फिर भी उनका पेट तो भर जाता है भगवान की योजना से? और न ही वो लोग मंदिर आते हैं, न ही वो लोग जप करते हैं, फिर भी उनका पेट तो भर जाता है। जब प्रकृति में पशुओं के, सारे प्राणियों के भोजन के लिए, आहार के लिए व्यवस्था की है भगवान ने और उनका पेट भर रहा है, चाहे वो हाथी हो या चींटी हो, तो फिर हमारा पेट क्यों नहीं भरना चाहिए? क्योंकि पशु जो होते हैं वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे भगवान ने उनके लिए जीविका का साधन दिया है, जैसे उनके लिए एक जीवन शैली बताई है, वैसे ये प्राणी करते हैं, इसलिए भगवान का आयोजन उनके लिए परिपूर्ण है, पर्याप्त है। परंतु समस्या ये है कि मनुष्य भगवान ने बनाए हुए नियम का पालन को छोड़ के स्वतंत्र होना चाहता है, पशुओं की तरह नहीं रहता है वो और चाहता है, लोभ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जैसे भगवान चाहते हैं वैसे नहीं रहता है। इसलिए कभी कभी देख के देखा जाता है कि बहुत कष्ट होता है और ऐसे कष्ट के भय से व्यक्ति संग्रह करने लगता है। संग्रह करने के लिए 2 कारण हैं, एक लोभ और दूसरा भय, सही है? लेकिन पशु ऐसे नहीं करते। तो सरल जीवन जीने का मतलब ये है कि हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है। जो गृहस्थ आश्रम में है उनको तो पैसे की आवश्यकता तो है ही, परंतु बहुत ज्यादा पैसे के पीछे जाना और ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमाओ, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है। यह बहुत ज्यादा खाना, हमारे मंदिर के जीवन में भी ये सही है, हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो उधर वेग की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, तो ये हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा, अब अत्याहार के बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने टीका में क्या लिखते हैं ये जरा हम देख लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इन छह दोषों के बारे में और आने वाले श्लोक के छह गुणों के बारे में टीका लिखी है, तात्पर्य लिखा है। तो आइए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका में क्या लिखा है ये देखते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि आहार का मतलब है भोजन खाना, परंतु भोजन का एक और अर्थ है इंद्रियों के विषय का भोग करना। ये भोजन शब्द का दूसरा अर्थ है। भोजन शब्द का एक अर्थ क्या है? आहार। दूसरा अर्थ है इंद्रियों को तृप्त करना। तो बद्ध जीव ऐसे भोग किए बिना जी नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत तो इंद्रियों को तृप्त करना है ना, नहीं तो हम नहीं रह सकते। हम कृष्ण भावना भावित होकर तृप्त करते हैं, जैसे उधर उधर को थोड़ा बहुत तो भरना है ना, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ तो रात को सोने की आवश्यकता है, हमारे शरीर ढकने की आवश्यकता है, कभी प्यास लगती है तो प्यास बुझाने की आवश्यकता है। तो इंद्रियां कुछ चाह रही हैं और इंद्रियों के इन इच्छाओं को पूर्ण हम कृष्ण भावना में करते हैं, भावनामृत में करते हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि इंद्रियों को थोड़ी बहुत तृप्त न करके कोई व्यक्ति जी भी नहीं सकता, परंतु यह कार्य भोग की भावना में नहीं करना चाहिए। भोग की इस भावना से नहीं करना चाहिए कि मुझे इससे बहुत आनंद लेना है, ये भोग है ना, तो किस भावना से लेना चाहिए? अतः अत्याहार का मतलब है इंद्रियों के विषय को भोग के विषय में स्वीकार करना। तो इंद्रियों के जो विषय हैं जैसे रूप गंध स्पर्श आदि, इनको हमारे लिए भोग्य वस्तु समझ के इनका भोग करने का प्रयास करना, यह है अत्याहार। और एक अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या अर्थ दिए हैं? अधिक धन संग्रह करना और अधिक खाना। अब तीसरा अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं, वो क्या है बताइए?
इंद्रियों के विषयों को भोग के विषय में स्वीकार।
हाँ, इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भोग के विषय के रूप में स्वीकार करना, ठीक है, परंतु इन विषयों को भगवान की कृपा समझ के उतनी ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। तो यह अत्याहार नहीं है, युक्त वैराग्य है, ठीक है। जैसे हम भोजन तो लेते हैं लेकिन कृष्ण प्रसाद, कृष्ण के संबंध में, और दूसरी बात जितनी आवश्यकता है उस मात्रा में ही हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो यदि हम ऐसे करें तो ऐसे इंद्रिय तृप्ति जो है ये भोग या अत्याहार नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? युक्त वैराग्य कहलाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो अत्याहार के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं? अभी 2 मिनट का प्रवचन आप में से कोई दीजिए। कौन देंगे? हाथ ऊपर कीजिए। कौन बताएंगे? हाँ, थोड़े जोर से ताकि सभी लोग सुन सकें।
अत्याहार का मतलब भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि विषयों का,
थोड़ा जोर से, देखे ऐसे अपने मन में
तो यात्रा हो गया। अब आवश्यकता जितनी है उतना स्वीकार करना ये भी तो हो जाता है।
और एक महत्वपूर्ण बात भूल गए, कृष्ण के संबंध में होना चाहिए ना। हाँ, अब देखो यहाँ क्या लिखा है। परंतु इन विषयों को भगवान की कृपा समझ के, प्रसाद मतलब कृपा है ना, प्रसाद शब्द का अर्थ ही है कृपा। इन विषयों को भगवान कृष्ण की कृपा समझ के उतने ही मात्रा में स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। तो फिर ऐसी जो इंद्र तृप्ति है वो भोग या अत्याहार नहीं कहलाता है। फिर वो क्या कहलाता है? युक्त वैराग्य। ठीक है, तो ये है अत्याहार। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका में अत्याहार के बारे में वो क्या कहते हैं कि अत्याहार के और उदाहरण वो देते हैं। न केवल जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा धन संग्रह करना, भोग करना, और भी उदाहरण है इसके। ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञानार्जन एवं ग्रंथ लिखना, जैसे मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, वो बहुत मानसिक चिंतन करते हैं और फिर अपने मनमाने ढंग से कोई निष्कर्ष निकालते हैं और फिर कोई ग्रंथ लिखते हैं, हम भगवान हैं, आप भगवान हैं, तो ये भी अत्याहार है। उनके डिग्रियां हासिल करना यह भी अत्याहार है, अनेक डिग्रियां। जैसे विश्वविद्यालय में जाके कोई ऐसे फालतू ज्ञानार्जन करता है जो भक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, बहुत सारे डिग्रियां एक के बाद एक के बाद एक प्राप्त करना, ये भी अत्याहार है। मुझे याद है महाराष्ट्र में ही एक मंत्री हुआ करते थे बहुत साल पहले, जिनके ऐसे 20-25 डिग्रियां थी। वकील की डिग्री थी, डॉक्टर की डिग्री थी, और बीए, बीकॉम, एमकॉम, कितने सारे डिग्री उनके सारे क्षेत्रों में थी। उनकी डिग्रियां 25-30 डिग्रियां थी विश्वविद्यालय से। तो क्या लाभ है इतना सब संसार का ज्ञान लेके, जब भगवान का ज्ञान नहीं है तो क्या लाभ है। और उदाहरण, कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जो धन, वैज्ञानिक ज्ञान आदि को आध्यात्मिक प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जिस व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और वो चाहे धन प्राप्त करना चाहे, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना चाहे इत्यादि अधिकाधिक मात्रा में, तो ये भी अत्याहार का उदाहरण है। ठीक है, ज़्यादा वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, ये भी अत्याहार का उदाहरण है। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामे सब अत्याहारी हैं। भुक्ति कौन है, ये क्या है? भोग। मुक्ति जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, और सिद्धि मतलब जो योगी हैं, जो योग की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी सब अत्याहारी हैं, क्योंकि वो अनावश्यक कार्य कर रहे हैं, फिजूल की बातें बोलते हैं और ज़रूरत जो नहीं है ऐसी चीज़ें करते हैं। उदाहरण, धनी व्यक्ति जिसका अगला जन्म मोची परिवार में होता है, ये क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी? हाँ, कौन बताएं, जोर से माइक यहाँ दीजिए।
करता है और बहुत आसक्ति रहती है उसके घर में और उसके परिवार में। तो मृत्यु के पश्चात नजदीक में ही उसी परिवार में उसका जन्म होता है और जब वो अपने पुराने पिछले जन्म वाले घर में जाता है तो उसी के पुत्र और बाकी घर के सदस्य उसकी पिटाई करके उसको भगा देते हैं।
तो क्या तात्पर्य इसका?
अधिकाधिक एनर्जी करने से फायदा नहीं है क्योंकि उससे व्यर्थ की आसक्ति होती है जिससे पुनर्जन्म ऐसी अवस्था में होगा और भगवान भक्ति से विस्तृत हो रहे हैं। हाँ,
तो ऐसे अत्याहार का फल यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि हम इतना परिश्रम करके धन कमा लेते हैं, अत्याहार करते हैं, फिर इसका अंत क्या होता है कि जिनके लिए हमने धन कमाया वही हमारे साथ ऐसे बुरा व्यवहार करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ये सब अत्याहार के ऊपर आधारित है ना, आधुनिक अर्थव्यवस्था, और वैदिक अर्थव्यवस्था अत्याहार के ऊपर आधारित नहीं है। जो वैदिक अर्थव्यवस्था है उसके लक्षण क्या हैं? भगवत भावना युक्त या उच्च विचारों से युक्त ये अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात, वैदिक अर्थव्यवस्था सादा जीवन के ऊपर आधारित है। आवश्यकताएं कम है तो अर्थव्यवस्था भी सरल हो जाती है। जब आवश्यकताएं हम सीमा के बाहर बढ़ाने लगते हैं तो अर्थव्यवस्था भी ज़्यादा जटिल होने लगती है। तीसरी बात, भूमि और गाय पर आधारित होती है और वैदिक अर्थव्यवस्था भूमि और गाय पर आधारित होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये सारी चीज़ें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। दूसरी जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सुखी रहने के लिए केवल तीन चीजें चाहिए। एक है कृष्ण और बाकी दो क्या है? भूमि और गाय। ये तीन चीजें हमारे पास हों तो हमारा जीवन ठीक हो सकता है। कृष्ण ने कंप्यूटर नहीं कहा, इंटरनेट नहीं कहा। ये चार चीज़ें हों, कृष्ण, भूमि, गाय और इंटरनेट, तो हमारा जीवन सफल होगा। नहीं, ये तीन चीज़ें हैं तो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हैं। एक स्थान पर रहकर शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करना, ये वैदिक अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। जैसे किसान, वो अपने घर में रहता है, उसका खेत घर के पास में रहता है या थोड़ी दूरी पर रहता है, ज़्यादा दूर नहीं। वो थोड़ा बहुत चल के खेती करके अपने घर में आ जाता है, सुखी जीवन बिताता है। परिश्रम है लेकिन ऐसा परिश्रम सुखी जीवन है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था जो कि भौतिक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो अत्याहार पर आधारित है, तो इसके लक्षण कैसे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, पहली बात, ये भगवत भावनाहीन है, नास्तिकवाद और भोगवाद के ऊपर आधारित है। दूसरा लक्षण, अनावश्यक व अनिच्छित वस्तुओं का उत्पादन होता है। अभी जितने भी विज्ञापन चल रहे हैं आप देखते हैं ना, बड़े बड़े विज्ञापन के बोर्ड लगे हैं सारे शहर में, पत्रिकाओं में विज्ञापन आते हैं। क्या आवश्यकता है इन सारे चीज़ों की? इतने सारे चीज़ें आजकल निर्माण हो चुकी हैं बड़े बड़े कारखानों में कि इनके वास्तव में देखा जाए तो आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, ये अनावश्यक आवश्यकताएं हैं, अननेसेसरी नेसेसिटीज। हम इनको आवश्यक समझते हैं लेकिन वास्तव में ये आवश्यक नहीं है। और ऐसे चीज़ों की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा लक्षण आधुनिक अर्थव्यवस्था का है कि ये बड़े बड़े कारखानों, वैश्यालयों, कसाई घरों पर आधारित है, भूमि पर और गाय पर नहीं, कृष्ण पर नहीं। बड़े बड़े कारखाने पैदा करना, वेश्यालय, सिनेमा, टेलीविजन, कसाई घर, ये सब हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि अंततः जब भूख लगती है तो आप अनाज खा सकते हैं जो भूमि का उत्पादन है, आप कारखाने के नट बोल्ट को नहीं खा सकते, सही है ना? इसलिए हमारे लिए आवश्यक क्या है जिससे हमारा पेट भरे और जिससे हम पौष्टिक आहार भी प्राप्त कर सकें। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का और अन्य अंतिम लक्षण है, जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे अच्छा उदाहरण तो बंबई का ही है, कोई विरार में रहता है बेचारा, चर्च गेट जाना पड़ता है, 2 घंटे सफर, दफ्तर 9 बजे तो सुबह उसको 6 बजे से घर से निकलना पड़ता है, रात को 10-11 बजे वापस आता है, वो भी आपको पता है बम्बई की रेलगाड़ियों में क्या अवस्था होती है, क्या दशा है लोगों की, ऐसे कष्ट प्रद जीवन है। और कई बार लोग अपने घर को छोड़ के कोई बम्बई से पुनः नौकरी करने के लिए जाते हैं, रोज जाते आते हैं। तो ये कलयुग की अर्थव्यवस्था के लक्षण है जो सादा जीवन उच्च विचार के विरुद्ध है। तो सारांश क्या है कि वैदिक अर्थव्यवस्था सरल जीवन ऊंचे विचार पर आधारित है और आधुनिक अर्थव्यवस्था ये अत्याहार के ऊपर आधारित है। ये निष्कर्ष, ठीक है? क्या निष्कर्ष है बताइए?
वैदिक अर्थव्यवस्था सादा जीवन ऊंचे विचार पर आधारित है, आधुनिक अर्थव्यवस्था ये
अत्याहार पर आधारित है। ठीक है, ठीक है। देखिए अत्याहार के बारे में कितनी बातें हैं हमारे आचार्यों ने बताई हैं, नहीं तो हम एक ही शब्द में उसको हाँ अत्याहार मतलब ज़्यादा खाना ठीक है, बस इतना ही ठीक है। बहुत कुछ है अत्याहार के बारे में, कितने कुछ अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने में मिली हैं, है ना? इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर की टीकाएं प्रभुपाद जी के ग्रंथ में नहीं हैं, हमने दूसरे जगह से ली हैं, लेकिन इसके लिए बहुत लाभदायक है। अब दूसरी बात, प्रयास। शायद आज ये सारा दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाएगा, तो और 10-15 मिनट करेंगे जितना हो सके। 6 लक्षण, ये 6 जो दोष हैं इनकी चर्चा नहीं हो पाएगी, जितने चर्चा होगी उतना हम करेंगे, ठीक है? तो प्रयास के बारे में, प्रयास का की परिभाषा क्या है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं परिभाषा के बारे में, प्रयास के बारे में बताइए। देखिए ग्रंथ में क्या परिभाषा है, शब्दार्थ में क्या लिखा है प्रभुपाद ने, या अनुवाद में क्या लिखा है, देखिए।
सांसारिक वस्तु के लिए अत्यधिक उद्यम,
अत्यधिक उद्यम करना, अत्यधिक उद्यम करना किन चीजों के लिए? ऐसे वस्तुओं के लिए जिनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसको प्रयास कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी इसके बारे में बहुत अच्छी टीका करते हैं। वो कहते हैं प्रयास कई तरह के होते हैं, भोग प्रयास, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास, योग प्रयास, वैराग्य प्रयास और भक्ति प्रयास। तो भक्ति प्रयास, केवल भक्ति के लिए जो हम प्रयास करेंगे वही उचित है, ये करना चाहिए। बाकी जितने भी तरह के प्रयास हैं ये व्यर्थ उद्यम है, इन्हें त्यागना चाहिए, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और भोग प्रयास में वो कहते हैं, स्थूल रूप से इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रखना ये तो भोग है ही, परंतु सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति भी एक चीज है, जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, ये भी एक भोग है। फिर कर्म प्रयास, ऐसे उन्होंने अनेक श्लोकों का उदाहरण दिया है। तो आप में से चाहते हैं जो आगे और पढ़ना चाहते हैं, इन श्लोकों को आप देख सकते हैं ग्रंथों से। हमारे पास इतना समय अभी नहीं है कि हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर प्रजल्प, प्रजल्प मतलब व्यर्थ की बातें करना। प्रजल्प के प्रकार अनेक प्रकार है, एक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास पढ़ना, यह भी प्रजल्प है। केवल व्यर्थ की बातें करना इतना ही प्रजल्प नहीं है, इन सब चीजों को पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, तो उपाजी देते हैं क्रॉसवर्ड पजल, आप रेलगाड़ी में देखेंगे लोग ऐसे बैठ के समय क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं होता उनको। भक्त होता तो जप करता या फिर कोई प्रभुपाद का किताब पढ़ता, लेकिन इनको पता नहीं होता, पहेलियां सुलझाते रहते हैं, कुछ न कुछ शब्द बनाते रहते हैं, क्रॉस वॉस कर लेते हैं, ये भी प्रजल्प है। समय को व्यर्थ गंवाने की बात है, तो प्रजल्प का मतलब है समय व्यर्थ गंवाना। केवल व्यर्थ बातें करना इतना नहीं, लेकिन समय व्यर्थ गंवाना। फिर तुच्छ या व्यर्थ कार्यकलाप करना, ताश खेलना, रेलगाड़ी में तो बहुत करते हैं लोग, है ना, टीवी देखना, मछली पकड़ना, बहस करना, भस नहीं, इस तरह मिस्प्रिंट है, भस नहीं, अंतिम वाला बहस होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया। बहस करना मतलब वाद करना लोगों से, तरह तरह के विषयों के ऊपर बैठ के तर्क करना, वाद करना, सब व्यर्थ की बातें हैं। मछली पकड़ना विदेश में खास करके, यहाँ तो इतना नहीं देखा जाता, लेकिन विदेशों में जब आदमी छुट्टी में जाता है, ये आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है अपनी नौकरी से, तो कहीं एक ऐसे सरोवर में जाएगा, नदी में जाएगा, और वो मछली पकड़ने की लकड़ी लेके बस यूं ही बैठ जाएगा, मछली पकड़ेगा, उसको उठाएगा। तो ये सब समय, मनुष्य जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ गंवाने की बात है बस। तो ये सब प्रजल्प के अंतर्गत आते हैं, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका क्या है प्रजल्प के बारे में? प्रजल्प जो भक्ति के प्रतिकूल है, प्रजल्प उसके कई उदाहरण दिए हैं, और जो भक्ति के अनुकूल है वो तो हमें करना चाहिए। वास्तव में जलपन या प्रजल्पन का मतलब है बोलना, लेकिन जब यहाँ इस्तेमाल किया गया है ये प्रजल्प शब्द, तो हमें प्रजल्प का तात्पर्य समझना चाहिए कि जो भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसे प्रजल्प की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो भक्ति के प्रतिकूल जो है, किस तरह के, कितने प्रजल्प हैं? व्यर्थ बातें करना, यथा समाचार पत्र, उपन्यास। दूसरी बात, तर्क करना, न्याय व वैशाषिक वैशेषिक दार्शनिकों के तर्क। षड दर्शन है, आप जानते हैं ना, मीमांसा, वैशेषिका और न्याय आदि, ऐसे अनेक तरह तरह के दार्शनिक होते हैं, अपने अपने सब दर्शन लेके बैठ जाते हैं, तो आपस में तर्क करते रहते हैं। तो ऐसे तर्क भी व्यर्थ है, प्रजल्प। दूसरों के बारे में बात करना, ईर्ष्या या अपनी प्रतिष्ठा स्थापना हेतु अपना बड़प्पन दिखाने के लिए दूसरों को नीचा स्थापित करने की कोशिश करना, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, ये सब भी प्रजल्प है, बहुत हानिकारक है हम सब के लिए। इसलिए इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढना, हमारी बुरी आदतें दूसरों में देखना या ढूंढना। आत्मवान मन्यते जगत, जो हमारे अंदर है हम अन्यों में देखते हैं। तो जब हम दूसरों में दोष देखते हैं, वो वास्तव में हमारे अंदर के दोषों का आरोप हम उनके ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए दूसरों में दोष देखना, ढूंढना, उनके बारे में बात करना, ये सब प्रजल्प है। झूठ बोलना, भक्ति में आने के बाद भी कई भक्तों की आदत ही बंद नहीं होती झूठ बोलने की। कोई भक्त गलत काम कर लेता है और जब कोई पूछता है कि तुमने किया, तो डर के मारे नहीं बोल देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई गलत काम किया है तो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, भले हमें कोई दंड मिले, कोई निंदा मिले, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। वैष्णवों की निंदा करना, ये भी प्रजल्प आ जाता है। और संसारी बातें, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सारी चीजें प्रजल्प के अंतर्गत आती हैं। और जो केवल सही प्रजल्प है वो है कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण या उनकी सेवा से संबंधित बातें करना, ये सही चीज है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। फिर नियम आग्रह, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक है नियम आग्रह और दूसरा नियम अग्रह, उनके उल्टे अर्थ हैं। तो नियम आग्रह का अर्थ है तुरंत लाभ या आर्थिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को उत्सुकता से स्वीकारना, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, किसी भौतिक लाभ के लिए। उदाहरण, कर्मकांड को स्वीकारना या वेदों के विधि विधानों को भोग की दृष्टि से स्वीकारना, ये है नियम आग्रह। बड़ी कट्टरता से छोटे छोटे नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करते हुए ये भूल जाना कि नियमों का अंतिम उद्देश्य क्या है, नियमों का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति करना। कौन सा श्लोक है इसके बारे में? स्मर्तव्यः सततम् विष्णुः विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वे विधि निषेधास्युर् एतयोर् एव किंकराः। इसका मतलब क्या है, कौन समझाएंगे? आपने श्लोक सुना है ये? हाँ। कौन समझाएंगे? हाँ, हिंदी में
भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखना और भगवान कृष्ण को भी ना भूलना, तो सारे नियम के सबसे सर्व ऊपर सब नियम से ये दो नियम हैं और बाकी सारे नियम इन दो नियम के नीचे
नीचे आते हैं, मतलब इनके दास हैं। मतलब इन सारे नियमों का पालन करने का अंतिम उद्देश्य है कि हम इन दो नियमों का पालन करें। कौन से दो नियम? कि कृष्ण को हम हमेशा याद रखें और कृष्ण को कभी भूले नहीं। तो नियम आग्रह का मतलब है कि भले वो कर्मकांड आदि के नियमों का पालन करते हैं, केवल भोग के लिए करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि नियमों का अंतिम उद्देश्य है कृष्ण को पाना। और कभी कभी नियमों का पालन करने में बहुत कट्टरता से वो कर लेते हैं। और दूसरी ओर नियम अग्रह, इसका क्या मतलब है? आध्यात्मिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं स्वीकारना। दूसरी ओर मतलब शास्त्रों के बारे में परवाही नहीं करना कि हमें कोई विधि विधानों की आवश्यकता ही नहीं है, हम स्वतंत्र जिएंगे। न हमें आध्यात्मिक प्रगति चाहिए न कुछ, मनमाने ढंग से कार्य करना, ये है नियम अग्रह। उसके उदाहरण चार नियमों का पालन नहीं करना और असत्संग स्वीकार करना, ठीक है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए दोनों प्रकार के नियमाग्रह वर्जित हैं, ठीक है। कि जल्दी से कर भी लेते हैं, फिर नियमाग्रह के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नियम दो प्रकार के होते हैं, एक विधि और दूसरा निषेध। जो विधि का मतलब है जो कार्य हमें कर्तव्य समझकर करने चाहिए, और निषेध वो है कि जो कार्य हमें, जो कार्य हमारे लिए वर्जित हैं। तो भक्ति के लिए हमें दोनों विधि और निषेधों का पालन करना चाहिए। विधि का अर्थ बताइए, कोई उदाहरण दीजिए भक्ति में। हाँ, सोलह माला का कम से कम जप करना, महामंत्र का, प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करना, चार नियमों का पालन करना, विधि में आता है कि निषेध में आता है? निषेध में आता है। सुबह मंगल आरती में आना, ये सब विधि है, और निषेध मांसाहार नहीं करना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, सांसारिक लोगों का संग नहीं करना, ये सब निषेध है, ठीक है। शास्त्रों के नियमों का पालन करके बद्ध जीव तुच्छ स्तर से उच्च स्तर की प्राप्ति कर सकता है। तो ये है नियमों के पालन करने का उद्देश्य और लाभ। हम निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पहुंच सकते हैं शास्त्रों के नियमों का पालन करने से। इन दो स्तरों के बीच में अनेक स्तर हैं। हर स्तर प्रगति के लिए एक छोटा कदम है, और हर स्तर के अनेक नियम होते हैं जिनका पालन करना स्वधर्म, स्वाधर्म नहीं, ये स्वधर्म होना चाहिए। स्वधर्म या निहित कार्य कहलाता है। तो जब व्यक्ति पशु के स्तर में रहता है तो वो तो कोई नियम पालन नहीं करता। दूसरी ओर एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर चुका होता है, तो ये सबसे नीचा स्तर, सबसे ऊंचा स्तर। अब इन दो स्तरों के बीच में अनेक स्तर हैं, ठीक है। जैसे पहली कक्षा और दसवीं कक्षा के बीच में बहुत स्तर है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसी प्रकार से अनेक स्तर हैं, और हर एक स्तर से संबंधित अनेक कर्तव्य हैं, और इनको हम स्वधर्म कहते हैं। तो अपने अपने स्तर के अनुसार हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो दूसरी कक्षा में है उसे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने चाहिए, जो पांचवी कक्षा में है वो पांचवी कक्षा के किताबों को पढ़ेगा। उसी प्रकार से जैसे हमारी आध्यात्मिक विकास है वैसे वैसे हमारे स्वधर्म होते हैं, और इन स्वधर्मों को का पालन हमें करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब है कि जो नियम बताए गए हैं उस स्तर के लिए, उनका हमें पालन करना चाहिए। अपने स्तर के नियमों का पालन करने से व्यक्ति अगले स्तर को प्राप्त करता है। जैसे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ के परीक्षा पास करके वो तीसरी में जाता है, इसे प्रगति कहते हैं। स्वधर्म का पालन करना पुण्य है, और पालन न करना ये पाप है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। फिर शास्त्रों के नियम दो प्रकार के हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप सबके रहने दीजिए ज्यादा डीप हो जाएगा, तो इतना कम से कम याद रख ले। अभी हम चार चीजों की चर्चा कर चुके हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प और नियमाग्रह, ठीक है। तो भले हम और दो चीजें चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़िए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अच्छी तरह से उसको पढ़िए और बार बार पढ़िए। आज आपने पढ़ लिया, एक 6-8 महीने के बाद फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, फिर से पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं लगता इसको पढ़ने के लिए, तो ऐसे बीच बीच में पढ़ते रहिए ताकि ये बातें हमारे मन में रहेंगी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।